Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। प्रमुख खबरों पर हम चर्चा भी करेंगे और खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमरीश।
पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग।
थैंक यू अमरीश। यस, द हेडलाइंस फर्स्ट। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड इन ग्रीन, सेंसेक्स क्लोजेस एट 73,917, निफ्टी सेटल्स एट 22,466। More than 125 startups on board to ONDC network in Startup Mahotsav today. And Brent crude trades above $83 per barrel in global crude market.
घरेलू शेयर बाजारों में आज तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 73,917 और निफ्टी 22,466 अंकों पर बंद हुआ। स्टार्टअप महोत्सव में आज 125 स्टार्टअप ONDC नेटवर्क में शामिल हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $83 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। और आज की पहली खबर, वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त नकारात्मक संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। मुंबई शेयर बाजार के 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 253 अंक यानी 0.34% की बढ़त लेकर 73,917 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62 अंक यानी 0.28% ऊपर चढ़कर 22,466 अंकों पर पहुंच गया। बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिडकैप में 1.2% की बढ़त देखी गई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 1.4% का उछाल दर्ज हुआ।
The stocks in detail, the benchmark indices Sensex and Nifty ended in green today amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex advanced 253 points or 0.34% to close at 73,917. NSE Nifty gained 62 points or 0.28% and settled at 22,466. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.2%, while the small-cap index gained 1.4%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 companies appreciated, 14 companies declined. Mahindra & Mahindra surged nearly 6%, JSW Steel rose 2.4% and Ultra Cement increased by 1.85%. On the other hand, TCS dropped 1.7%, HCL Tech declined 1.1% and Hindustan Unilever lost 1%. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors registered gains, 2 witnessed losses. Consumer durables rose 2.4%, auto sector gained 1.85% and realties added 1.7%. On the other hand, information technology fell 0.74% and tech sector lost 0.63%. The overall market breadth was positive as shares of 2,403 companies advanced and 1,410 companies declined and 126 companies remained unchanged.
और घरेलू शेयर बाजारों के अच्छे प्रदर्शन और विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ने के संकेतों के बीच रुपए में आज मजबूती दर्ज की गई। अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 83 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत जी, जैसा देख रहे हैं हम शेयर बाजारों का काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ और अभी हाल के समय में हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में दिखाई दिया देश के अंदर, लेकिन अब लगता है कि ये शायद ट्रेंड ऊपर की तरफ चले। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
तो अमरीश जी, आपने सही कहा कि बाजारों में हालांकि पिछले दिनों कुछ उतार चढ़ाव हमने देखा और कुछ चिंताएं रही बाजार को लेकर, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट जो है वो करीब करीब रिकॉर्ड स्तर पर अपने ट्रेड कर रही है और जो जिसे आप कह सकते हैं कि एक वाइड स्प्रेड रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत मजबूत है भारतीय बाजारों में। जितनी कंपनीज हम देख रहे हैं उनका प्रदर्शन देख रहे हैं, क्योंकि ये अब जो पहली तिमाही जो लास्ट क्वार्टर था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसके नंबर्स अब हमारे सामने आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 7% से ज्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर भी की अर्निंग्स अच्छी हैं। तो ये सब जो एक पॉजिटिव, इसको गोल्डीलॉक्स का एक आप वो दिया गया है, उपमा दी गई है कि सब चीजें जब पॉजिटिव होती हैं, सब फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। हालांकि मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब यूफोरिया होता है तो साथ में कॉशन भी जरूरी होती है। कुछ पॉकेट्स हैं मार्केट में जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा हैं और वहां पर थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, पर ओवरऑल मुझे लगता है ये अर्थव्यवस्था में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है मार्केट के द्वारा।
वी सी दैट विद इन द सर्टन bandwidth, if I may call it, the markets haven't seen a great high or a great low over the last few weeks. Does that also enforce investor confidence? As again, we were just talking about that domestic investors seem to have greater confidence now, and we've had unprecedented number of demat accounts. The Indians. So does that mean that we have arrived?
So okay, Laliba. So we are in the process of arriving, I would say, on the global stage. But in a way, we already are there, because India is today one of the largest stock exchanges in derivatives in the world. Mm-hmm. So we are almost close to where Chicago is. So clearly, which is a huge achievement. And if you look at the number of you mentioned the number of demat account holders, that has crossed 15 crore demat accounts in the month of March. As far as mutual fund subscriptions are concerned, more than 20,000 crore net inflows through the SIP alone, the SIP alone, is happening now. Mm-hmm. And so we have seen that in the last 25 odd years, Indian stock market was largely dependent on foreign investors for fund flows. Mm-hmm. And we should be very sensitive to what foreigners think about us and what they're investing. But fortunately, in the last 3-4 years, what we have seen is that balance of power has shifted to domestic investors. And more domestic investors are putting long-term money. Mm-hmm. and they're giving long... I would say they're giving a lot of stability to this market. So clearly, the dynamics of this market has changed. Having said that, of course, we are linked to the global markets. Right now, in fact, yesterday, Dow Jones Industrial Average, which is the benchmark for the US, it touched 40,000 level for the first time ever in the history. Mm-hmm. So clearly, there is a worldwide euphoria or positivity in the markets right now, and we are riding on those winds. But at the same time, I think there are a lot of domestic factors which justify this kind of rise.
Puneet ji, agar hum dekhen, jaise aapne FIIs ka zikr kiya ki wo kafi nikal lete hain paisa Indian markets, aur abhi recently bhi ye trend humne lagatar dekha, iska kya election se koi sambandh hai? Kyunki hamara ek lambe samay tak election chal raha hai, to kya us jo polling phase hai uske dauran koi निश्चितता की वजह से उसका भी एक कुछ असर आपको शेयर बाजार पे दिखाई देता है?
देखिए ब्रिज जी, ऐसा कुछ मान्यता है कि इस प्रकार से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखकर फैसला करते हैं, पर मेरे अनुभव में ऐसा नहीं होता। जो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, वो अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखकर या आगे के प्रोस्पेक्ट को देखकर उसमें निवेश करते हैं। ये जरूर है कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो तो डेफिनेटली वो थोड़े कॉशियस रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो अभी जो माहौल है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी पॉजिटिव मूड में हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक तरफ हम भारतीय बाजार पूरे ऊंचाइयां छू रहे थे, रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे थे, तो चीन के जो बाजार थे, जो कि हमारे से कॉम्पीटिंग अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे बहुत छोटे हैं अभी साइज में, बट अटेंशन के लिए मैं कहूंगा वो कॉम्पीट हमारे से काफी करते हैं, तो चीन के जो बाजार थे पिछले वर्ष तक वो अपने 20 वर्ष के नीचे स्तर पर चल रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कॉन्फिडेंस कम था, तो वहां पर क्या सिचुएशन थी। हालांकि अभी चीन के बाजारों में थोड़ी तेजी आई है, तो कुछ रीएलोकेशन, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो पैसा बनाने से मतलब है, तो वो क्या अभी क्या चल रहा है हम देख रहे हैं भारत में कि वो थोड़ा यहां प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और थोड़ा रीएलोकेशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं चाइना में, वहां वेटेज बढ़ाई है उन्होंने। तो कुछ इस प्रकार से चलता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जैसे मैंने कहा वो भारतीय बाजारों की रीढ़ की हड्डी है और उन्हीं के दम पर मुझे लगता है अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
पुनीत जी, इन द यूएस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेमिटेंसेज कम्स फ्रॉम द इंडियंस, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंडियन डायस्पोरा? दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, बट व्हाट इज देयर रोल, बिकॉज दे ऑल्सो यू नो दे से यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ द कंट्री बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन, सो दे डू सेंड अ लॉट ऑफ रेमिटेंसेज टू आर कंट्री। व्हाट इज देयर रोल इन द कंट्रीज इकॉनमी?
ह्यूज, एंड आई टेल यू सिंगल नंबर सिग्निफाइज दैट लास्ट ईयर द रेमिटेंसेज अब्रॉड फ्रॉम इंडियंस लिविंग अब्रॉड क्रॉस्ड $100 billion. सो वी हैड $100 billion, मोर देन $100 billion ऑफ इनफ्लोज फ्रॉम इंडियंस लिविंग अब्रॉड विच आर सेंडिंग मनी टू इंडिया, एंड आई मीन यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी विच इज देयर, एंड इंडिया टूडे हैज अमंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरन एक्सचेंज द वर्ल्ड विच इज $640 billion ऑफ फॉरेक्स रिजर्व दैट वी हैव। सो क्लियरली दिस होल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, ऑफकोर्स इट इज पार्टली बेस्ड ऑन वॉट वी आर डूइंग हियर, गवर्नमेंट इज कैरिड आउट रिफॉर्म्स, आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बूमिंग, वी आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर डूइंग वेरी वेल। At the same time, I think the support that we always got from diaspora, and you know, not only in terms of money, in terms of technology, in terms of the investments that they brought into the country, I think that has really built this whole environment in which we are prospering.
पुनीत जी, आपने वैल्यूएशन की बात की कि काफी हाई वैल्यूएशन है वर्ल्ड इकोनॉमी की दृष्टि से भी देखें और भारत में भी, तो इस हाई वैल्यूएशन से क्या कुछ नुकसान भी संभावित है आपको ऐसा लगता है?
देखिए अमरीश जी, पहली बात यह है कि भारतीय शेयर बाजार को थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा शुरू से मिली है, हम इसको प्रीमियम वैल्यूएशन भारतीय बाजारों में हमेशा रही है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखते हैं जो कि एक तरीका है शेयर मार्केट में वैल्यूएशन को नापने का, तो भारत में वो पी मल्टीपल ज्यादा रहता है दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से, लेकिन उसका खास कारण यह है कि यहां पर ग्रोथ पोटेंशियल जब ज्यादा है, अगर हम 7% पर ग्रो कर रहे हैं तो जिसे हम प्राइस अर्निंग ग्रोथ मल्टीपल कहते हैं वो यहां पर पीईजी रेशो वो भारत में ज्यादा होती है, तो प्रीमियम हमें थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार का यूफोरिया होता है एक इतना या मैं कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में, तो ऐसा भी हो सकता है कि निवेशक जो बहुत जिनको बहुत स्टडी नहीं है या बहुत वो कभी र्यूमर्स पर या सुनी सुनाई बातों पर वो निवेश कर देते हैं या स्पेकुलेशन में वो फंस जाते हैं कि जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं और जल्दबाजी में वो, तो ऐसे बाजारों में मुझे लगता है कि बहुत संभल करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि कई ऐसे शेयर्स जो डिजर्व नहीं करते वो वैल्यूएशन या वो प्राइसिंग वो उस वैल्यूएशन पर बिक रहे हैं, लेकिन कई बार हम लालच में या हम जल्दबाजी में उन शेयर्स में या लैक ऑफ नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वैल्यूएशन ज्यादा होना एक प्रकार से अच्छा है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन उसका खतरा यह है कि छोटा निवेशक जो बहुत नॉलेजेबल नहीं है वो गलती कर सकता है।
तो इसमें संतुलन किस तरह से बना के रखा जा सकता है?
देखिए, जो बिल्कुल ही पैसिव इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत स्किल्स नहीं है, उनके लिए तो बेहतर यह है कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। और दूसरा चीज क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको किसी भी एक कंपनी में यदि नुकसान भी होता है तो आपको प्रोपोर्शन जो है बहुत छोटा होता है। तो म्यूचुअल फंड्स में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स और डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों चीजें मिलकर हमारे रिस्क को कम करती है। अगर आप उससे लेकिन नेचुरली म्यूचुअल फंड में फिर जो रिटर्न्स हैं वो भी एक मॉडरेट लेवल पर आती हैं, और जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न ज्यादा होती है, तो उसका हमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। पर उसके लिए देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मार्केट में सीधा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रकार से उसमें काफी समय देना पड़ेगा।
रिटेल इन्वेस्टर के लिए खतरे उसमें ज्यादा हो जाते हैं।
रिटेल इन्वेस्टर का मैं 25-30 वर्षों से जुड़ा हूं स्टॉक मार्केट से, लोग पैसा तो जल्दी बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें समय नहीं लगाना चाहते। वो चाहते हैं कहीं से सुन ले, कोई हमें बता दे, कोई हम कोई र्यूमर सुन ले और हम उसमें जल्दी से पैसा बना ले। ये बहुत खतरे का काम है।
पुनीत जी, कमिंग टू सम स्पेसिफिक सेक्टर्स, आवर रिपोर्ट सेज ऑटो सेक्टर गेन 1.85% एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेल 0.74%। इन द ऑटो सेक्टर आई वॉज जस्ट रीडिंग द पेपर्स दैट टू व्हीलर सेगमेंट इन द रूरल सेक्टर has now probably come to the pre-COVID levels. The sales have been very, very good. And whatever happened to the IT sector? Because for some time it had seen it was going very high, and now as we see our report says falling 0.74%. Your comments?
So two things. One is the auto sector has been the shining star of the COVID, post-COVID recovery. Mm-hmm. What we have seen is that the demand for cars, for two-wheelers, for practically all modes of vehicles, it really went up. Particularly cars, and even within the cars, surprisingly, it was the SUVs, the premium segment of cars, which actually saw the highest growth in demand. Mm-hmm. So clearly, I think the Indian consumer came of age post-COVID, mm-hmm. and Indian consumers are willing to spend a lot more on premium products, and so we're seeing that kind of demand. If you look at the two-wheeler segment, because there was some kind of a lag in the rural market, two-wheelers were slow to take off post-COVID. But now we have seen the demand for two-wheelers also picking up very well. I think it shows to some extent the recovery in the rural economy. Rural economy was kind of lagging a little bit until last year, and now in the last few months it has picked up. So because two-wheeler sales are directly linked to rural incomes. And I think that is there. Mm-hmm. As far as IT is concerned, Lalima, the truth is that the IT sector is facing a lot of challenges worldwide. At the same time, there are many possible possibilities, in terms of artificial intelligence which has come up.
Right.
So, on one hand, we have this growth coming from AI. On the other hand, first time in last 20 years, we have seen the total headcount in the top IT companies coming down. In fact, IT companies in India used to hire almost 50,000 to 60,000 engineers every year. And this is the first year when we have seen a decline in numbers of hirings. In fact, they have not hired any new people. In fact, the employment has gone down by 10,000 people. So that probably could be the effect of AI coming in and replacing certain jobs.
Uh-huh.
So clearly, I think that IT sector is going through a very, very difficult phase of readjustment to new reality, new technologies, and I think this will go on. So the large IT companies, of course, will be able to take on the challenge, and I'm sure they will prosper further.
Mm-hmm.
Mid-segment IT companies could face some difficulties.
IT is also dependent on how the Western markets function. Absolutely. and the health of those markets.
Yeah, yeah. So 70% of IT revenues actually come from exports to European and the American markets. While America has been doing well, and so we have stability in revenues from America, mm-hmm. the European geographies have not been doing too well. In fact, the economies in Europe were suffering mm-hmm. until some time back. In fact, Germany was in technical recession.
Mm-hmm.
So clearly, European markets are not contributing as much to the revenue. So that, of course, is also happening. But my belief is that is also part of this larger technology rejig within the sector. Where AI is replacing many jobs. So I think it will take some time to settle down.
Puneet, aur banking sector ke bare mein aapko kya sambhavnaye dikhai deti hain?
To Amrish, banking mein dekhiye jo numbers hamare samne aaye hain abhi, वो ये बताते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे प्रदर्शन है। करीब 14-15% तक ग्रोथ उनके टॉप लाइन में, रेवेन्यूज में वो आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो बैंकिंग क्षेत्र ने डिजिटाइजेशन किया और जो ग्रोथ देखी हमने इन टर्म्स ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ बैंकिंग, वो बहुत अच्छा हुआ। जैसे यूपीआई में अगर हम देखें तो यूपीआई के आने से बहुत बड़ा ग्रोथ एक डिजिटल पेमेंट्स में आया, डिजिटल एनवायरमेंट में आया। तो बैंकिंग का जो दायरा था वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत विस्तार हुआ उसके अंदर। पर्टिकुलरली मैं ये कहूंगा कि जो डिजिटल इकोनॉमी है उसकी वजह से बैंकिंग को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो बैंकिंग एडवांसेज हैं वो रहे हैं टू दी रैम सेक्टर, मतलब रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमईज। जो बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर अभी बैंकिंग की जो उधार है वो भी पिकअप नहीं कर रहा है। पर मुझे उम्मीद है कि जब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 7% रहती है तो यहां पर भी बेहतर प्रदर्शन आएगा।
मे बी वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ यूपीआई द bottom of the pyramid also has got included into the banking system.
Absolutely. It's amazing. I mean, look, and the numbers are mind-boggling. It is the largest payment system in the world now.
Yes, yes.
And Puneet, rupee ko लेकर भी आज अच्छी खबर है कि 17 पैसे मजबूत हुआ। रुपए की जो वैल्यूएशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए रुपया तो ये इसमें हम उतार चढ़ाव थोड़ा देखते रहते हैं, पर खास बात यह है मैं कहूंगा कि अगर रुपए को हम पिछले 4 या 5 वर्षों के परिवेश में देखें तो रुपया बहुत स्टेबल करेंसी है, जबकि ऐसा नहीं हुआ बाकी जो साउथ एशियन करेंसीज थी पिछले 2-3 वर्षों में उसमें काफी गिरावट आई, क्योंकि जब डॉलर के हम इंडेक्स में तेजी देखते हैं, डॉलर इंडेक्स अभी करीब 105 का डॉलर इंडेक्स है, तो जब भी और कोविड के बाद एकदम हमने देखा तेजी से ये डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर आया था, तो काफी एशियन करेंसीज में गिरावट आई, यहां तक कि चाइना का युआन, जबकि चाइना एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है जहां पर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बहुत ज्यादा है उनके, उसके बावजूद भी चाइनीज युआन में काफी एक गिरावट आई थी, पर भारत की जो करेंसी है हमने देखा यह काफी स्टेबल रही है। और उसका मुख्य कारण मैं ये कहूंगा कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं 650 बिलियन डॉलर के आसपास के रिजर्व हैं, दुनिया के 4th सबसे बड़े रिजर्व हैं, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा एक रोल है। और जैसे लालिमा ने कहा जैसे उसमें डायस्पोरा भी अगर 100 बिलियन डॉलर हमको भेज रही है तो उससे बहुत फायदा होगा।
जी
एंड ऑल्सो द रूपी हैज स्ट्रेंथन्ड, इफ आई मे आज अमरीश जी, रूपी हैज स्ट्रेंथन्ड ग्लोबली विद, वी आर नाउ ट्रेडिंग इन रूपी विद मेनी कंट्रीज राइट।
और चलते हैं एशिया के अन्य देशों का और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% की बढ़त दर्ज की गई। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.26% और हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.9% की तेजी दिखाई दी। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1% और जापान के निकेई इंडेक्स में 0.34% की गिरावट दर्ज की गई। उधर यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज दिन के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुटसी दोनों में ही 0.4% की गिरावट चल रही थी। फ्रांस का कैक 0.45% की सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा था। पुनीत जी आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हालांकि काफी मिक्स ट्रेंड रहा एशियन मार्केट्स के गई अगर हम बात करें, और चीन में आज बढ़त भी दर्ज की गई।
अमरीश देखिए जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मार्केट्स हैं वो उसका प्रदर्शन अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत अच्छा रहा है। जो एक ही लैगिंग मार्केट थी, जो बड़ी मार्केट थी चाइना की, लेकिन चाइना की मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि जो रिस्क एसेट्स हैं, जहां पर अभी जो रिस्क एपिटाइट है इन्वेस्टर्स की, वो काफी मजबूत है, इसलिए हम तेजी दिख रहे हैं।
Alright, let's look at the US markets now. US stocks closed lower on Thursday after the Dow reached an intraday high of 40,000 for the first time as investors continued to recalibrate their rate cut expectations following data showing a slowdown in inflation as well as strong corporate earnings results. Nasdaq slipped to 0.26%, Dow Jones Industrial Average fell 0.1% and S&P 500 declined 0.21%. Back home, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, organized the Open Network for Digital Commerce, ONDC Startup Mahotsav, a first-of-its-kind event today at Vanijya Bhavan, New Delhi. The event symbolized the celebration and collaboration of two of DPIIT's flagship initiatives, the Startup India Initiative and ONDC. Secretary DPIIT Sri Rajesh Kumar Singh said, the ONDC Startup Mahotsav is an inflection point for startups in India to leverage the opportunities unlocked by ONDC. More than 125 startups have committed to on board to ONDC network in today's event, and it reflects the excitement and momentum of the national initiative, unquote. The ONDC Startup Mahotsav is a unique collaboration between the ONDC and the Startup India Initiative. More than 5 lakh sellers have been onboarded on the platform, of which more than 70% are small or medium-sized sellers. In April 2024, ONDC facilitated around 7.22 million transactions. Today, India is amongst the leading startup hubs with more than 1.3 lakh DPIIT recognized startups. These are operating in more than 55 sectors, bringing innovation across domains. The startups have created more than 13 lakh direct jobs in the country. So this whole report validates the fact that India is the third largest startup in the world, isn't it, Puneet?
Absolutely, and we are also the third largest economy by ई कॉमर्स बायर्स द कस्टमर्स लार्जेस्ट इज चाइना देन यूएस एंड देन इंडिया. सो क्लियरली द नंबर ऑफ पीपल ट्रांजैक्टिंग ऑन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इज ह्यूज इन इंडिया एंड येट आई मस्ट पॉइंट आउट दैट ओनली 5% ऑफ द टोटल बाइंग इन इंडिया एक्चुअली हैपन्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. सो देर इज ह्यूज स्कोप for growth and I think ONDC which is the first independent digital commerce platform, I think that is the really the way forward. It's kind of developing now but I think going forward will really grow.
पुनीत जी, हम सभी ये मानते हैं जैसा आपने कहा भी कि स्टार्टअप ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिस तरह से पूरे सिस्टम को जिस तरह से सफलता मिली है. लेकिन आप स्टार्टअप के बारे में अभी आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं, अभी किस तरह का और हमें ग्रोथ या क्या उछाल दिखाई देगा और किस तरह का कंट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था में होगा?
देखिए अम्बरीश, मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टार्टअप से जो मोमेंटम मिलेगा इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा मोमेंटम होगा. क्योंकि देखिए बड़ी जो बिजनेसेस हैं वो एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क होता है, वहां पर ग्रोथ उतनी नहीं होती, कम ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटीज भी कम होती है. जो छोटा जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो उसके नए आइडियाज होते हैं, नई एनर्जी होती है एंड द ग्रोथ रेट इज वेरी हाई. तो जिस प्रकार से 1,30,000 स्टार्टअप्स डीपीआईटी ने प्रमोट किए हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया है और ओएनडीसी जैसा नेटवर्क उनको मिलता है अपना सामान बेचने के लिए, वो बहुत बड़ी एक सुविधा है. जो क्योंकि जो दूसरे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां तो बहुत पैसा लगता है, बहुत बड़ा कट देना पड़ता है उनको सामान बेचने के लिए. तो ओएनडीसी इज अ वेरी एफिशिएंट प्लेटफॉर्म टू सेल. तो अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स का जो पूरा मैं कहूंगा एनवायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है इंडिया में और विश्व में. अगेन जैसे लालिमा कह रही थी कि सेकंड थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ स्टार्टअप्स भारत में है और मुझे लगता है इसका बहुत फायदा होगा अर्थव्यवस्था को.
दिस इज ऑल्सो ओपन अप अ होल विस्टा ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स.
एब्सोल्युटली एंड दिस होल डायनेमिक्स इज चेंज. आई मीन अर्लियर नो वन डिड हिज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन
डिग्रीज.
इट्स नो लॉन्गर ट्रू. आई मीन दे आर लुकिंग फॉर मेकिंग फॉर देमसेल्व्स एंड नो मेकिंग फॉर द कंट्री. दैट्स ग्रेट.
और सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज भी बनाई, जिस तरह का पुश और इंसेंटिव भी दिए हैं, उससे काफी फायदा है.
बहुत फायदा हुआ है बिकॉज वो पूरा जो एनवायरमेंट है उसको केटर करता है स्टार्टअप सिस्टम को.
ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द ऑयल प्राइसेस नाउ. ऑयल प्राइसेस फेल 0.2% इन ग्लोबल क्रूड मार्केट. ब्रेंट क्रूड डिक्रीज बाय 0.2% टू $83.1 अ बैरल बाय द यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट. WTI लॉस्ट 0.24% टू $79.04 अ बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन.
और सोने के मूल्यों में आज मामूली तेजी दिखाई दी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोने का मूल्य 73,070 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया. जुलाई अनुबंध के लिए चांदी भी बढ़त के साथ 87,719 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. पुनीत, आप क्या कहेंगे सोने के मूल्यों में, आपके हिसाब से कितना स्टेबल है सोना निवेश की दृष्टि से, क्योंकि लगातार ही बढ़त दर्ज की गई. हालांकि यहां पर मान्यताएं अलग अलग हैं कि निवेश के लिए कितना उपयुक्त है या नहीं है. आप श्रोताओं को और निवेशकों को क्या राय देना चाहेंगे?
देखिए, एज अ जिसे मैं कहता हूं इमरजेंसी सेविंग्स, इमरजेंसी कैश, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है सोना. और आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट में इसका एक अच्छा हिस्सा होना चाहिए. 10-15% हिस्सा जरूर होना चाहिए. और सोने की अगर हम देखें जो चाल रही है और जो मुझे लगता है आने वाले समय में सोने की चाल रहेगी, वो मजबूती की तरफ रहेगी. क्योंकि दुनिया के काफी बड़े बड़े बैंक्स, चाइना आप जानते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर बाइंग कर रहा है और बहुत बड़ी उनकी कंजम्पशन है गोल्ड की. इसी प्रकार से जो दूसरे बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां भी हमने देखा है कि सोने को उन्होंने खरीदारी करी है. तो डॉलर से आगे बढ़कर कुछ अब सोने के प्रति भी निवेशकों का उत्साह है. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोना जो है वो पॉजिटिव एक ट्रेंड पे रहेगा. चांदी भी देखिए, लेकिन मैं चांदी को एक उभर कर आई है, बिकॉज पहले चांदी में बिल्कुल हम बदलाव नहीं देखते थे. चांदी में काफी बाइंग हुई है, काफी इन्वेस्टमेंट है और मुझे लगता है चांदी भी आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न देगी.
सोना आपको लगता है कि मुख्य रूप से जो सरकारें खरीदारी कर रही है उसकी वजह से ज्यादा?
बिल्कुल, जो सरकारें जो खरीद रही हैं, रशिया में हम सुनते हैं, चाइना में सुनते हैं, तो इस प्रकार के जब बैंक होती है सरकार के द्वारा, वो उसमें उससे काफी मजबूती मिलती
है। व्हाट आर व्यूज यू हैव व्यूज, वन इज एक्चुअली बाइंग द मटेरियल गोल्ड एंड वन इज द बॉन्ड्स, अ क्विक कमेंट।
सो लालबा, बॉन्ड्स आर डेफिनेटली मच बेटर बिकॉज बॉन्ड्स नॉट ओनली गिव यू एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड, दे ऑल्सो गिव यू 2.5% इंटरेस्ट ऑन व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, डेफिनेटली बेनिफिशियल।
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। पुनीत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अमरीश।
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड इन ग्रीन, सेंसेक्स क्लोजेस एट 73,917, निफ्टी सेटल्स एट 22,466। मोर देन 125 स्टार्टअप्स ऑन बोर्ड टू ONDC नेटवर्क इन स्टार्टअप महोत्सव टुडे। एंड ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स अबव $83 पर बैरल इन ग्लोबल क्रूड मार्केट। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माई सेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माई को एंकर अमरीश सक्सेना साइनिंग ऑफ। नमस्कार। Market Mantra.